Hello students, I am Dr. Ruchika Khandelwal and today's discuss the computation of cash flow from different activities. Cash flow statement is prepared to show movement of cash and cash equivalent under the following activities. Number 1, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from financing activities. We will discuss first cash flow from operating activities. Operating activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing and financing activities. Cash flow from operating activities arise from principal revenue producing activities of enterprise that determine the net profit or loss. Besides, is also result from those activities that are not investing and financing. For example, cash flow from operating activities are cash received from sale of goods and service, cash purchase of goods and service and employees benefit expenses, gain on sale of marketable securities. Cash flow from operating activities may be calculated by using either by direct method or indirect method. We will discuss indirect method. Indirect method of calculating cash flow from operating activities. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की मदद से. सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ये स्टेप 1 हमारी होगी. इफ़ इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट इफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यदि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट अवेलेबल है और हम प्रॉफिट अर्न या लॉस इनक्योर जो कंपनी ने किया उसके बिहाफ पर निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें गिवन है तो हम उससे शुरू करेंगे. और यदि स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है, मीन्स हमारे पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास सरप्लस या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है, तो हम क्लोजिंग और ओपनिंग के डिफरेंस से शुरू करेंगे. यदि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से शुरू करते हैं तो इसके अंदर यदि टैक्स माइनस है, हमारे पास गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर P&L है, तो हम उसमें प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मैड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में जो हम प्रोविज़न बनाएंगे वो प्लस करेंगे. क्लियर? और यदि हमने कोई इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट किया है स्टेटमेंट के अंदर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसे लेस करेंगे. ये एड लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ये जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अपना प्रॉफिट उठाकर कैश फ्लो शुरू किया. और यदि हम बैलेंस शीट का सरप्लस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो उसके अंदर हम सरप्लस में क्लोजिंग और ओपनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो सरप्लस है, यदि P&L के नाम से दिया है तो P&L और अगर जनरल रिजर्व के नाम से दिया है तो जनरल रिजर्व, दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसमें प्लस करेंगे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे फाइनल हो या प्रपोज्ड हो. ड्यूरिंग द ईयर का जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर या कोई जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास प्रीवियस ईयर जनरल रिजर्व 10,000 था और इस साल करंट ईयर में 15,000 है, दैट मीन्स हमने 5,000 ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट से, तो उसे भी हम प्लस कर देंगे. जो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर बनाया उसे भी प्लस कर देंगे. जब हम ये सब प्लस करेंगे तब हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आने के बाद हम इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस करेंगे और नॉन कैश इनकम माइनस करेंगे. नॉन कैश एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश. मतलब ऐसे वो सारे खर्चे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं लेकिन उसका पेमेंट कैश में नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस है. और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारा निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम प्लस कर देंगे. डेप्रिसिएशन हुआ हमारा, गुडविल राइट ऑफ जो एमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब हम प्लस करेंगे। इसी तरह नॉन कैश इनकम जो हमारी होगी वो माइनस करेंगे। नॉन कैश इनकम मीन्स इनकम एंड गेंस क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दे डू नॉट इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ कैश। एग्जाम्पल्स आर राइटिंग ऑफ लाइबिलिटीज, डेब्ट रिटर्न ऑफ, एक्सीज प्रोविज़न एट्सेट्रा। ये सारे नॉन कैश इनकम हम उसमें प्लस करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस हमने प्लस किए, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम हमने माइनस करी। ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी हम कहेंगे। इसे करने के बाद हम जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब हमारे पास जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें हम देखेंगे यदि हमारी करंट असेट्स प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हम उसे डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स हम उसे माइनस करेंगे, रिवर्स इफेक्ट है। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे, यदि डिक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे। और करंट लाइबिलिटीज़ के केस में ये सीधा होगा, अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे, और यदि करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे। ये सारा नेट चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम जब करेंगे तब हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। और इसके बाद हम इसके अंदर इनकम टैक्स अगर पेड हमें गिवन है तो हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, तब वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलेगा, यानी बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश का फ्लो क्या हुआ, हमारे पास कैश का सोर्स आया। यदि ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा, और यदि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। मतलब जो भी चीज़ें हम प्लस कर रहे हैं दैट मीन्स इनफ्लो, और जो भी चीज़ें माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स आउटफ्लो। तो इस तरह से हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यदि माइनस में आया तो यूज्ड इन वर्ड यूज़ करेंगे, और प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की पहली स्टेप्स कंप्लीट होती है। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ इन विच इन्वेस्ट द कैश फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। सो परचेज ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स खरीदते हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये कैश इनफ्लो हुआ। प्रोसीड फ्रॉम सेल इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी इनफ्लो हुआ। लोन एंड एडवांस रीपेमेंट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ था और वो बंदे ने हमें लौटा दिया तो ये भी इनफ्लो हुआ। रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा और उससे इनकम हो रही है, वो भी इनफ्लो हुआ। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शेयर, ये सब इनफ्लो किस में हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन इन एडवांस गिवन, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पेमेंट हुआ। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकलेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ये कैसे पता पड़ेगा हमें बैलेंस शीट देखकर कि एसेट्स हमने परचेज की है या सेल की है। सेम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिक्स्ड असेट्स का डिफरेंस हम देखेंगे। अगर नीचे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है और केवल हमें ऊपर ये बैलेंस दिया है, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये डिफरेंस बहुत कम अमाउंट का हमें दिखाई दे रहा है, तो हम अगर प्रीवियस ईयर में हमारी असेट्स 1,00,000 थी और करंट ईयर में हमारी असेट्स 90,000 है और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई दूसरी बात फिक्स्ड असेट्स के बारे में नहीं की गई, तो हम उसे सिंपली डेप्रिसिएशन मानेंगे। लेकिन यदि हमें नीचे क्लियर कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर में इतने की असेट्स सेल हुई तो हम उसे सेल ऑफ असेट्स मानेंगे, यदि हमें कहा है कि इतने की असेट्स परचेज हुई तो हम उसे परचेज ऑफ असेट्स मानेंगे। कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें एक ही इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि प्रीवियस ईयर की असेट्स 1 लाख है और नीचे लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर में 20,000 की असेट्स सेल कर दी, तो होना कितनी चाहिए? 1 लाख है और 20,000 की सेल कर दी, तो करंट ईयर में 80,000 होनी चाहिए। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो वहाँ पर 1,20,000 दिख रही है। अब ऐसी कंडीशंस में अगर हमारे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अलग से मेंशन है तो उसे माइनस करने के बाद हम जो डिफरेंस आएगा उसे परचेज ऑफ एसेट्स मानेंगे। इसे हम स्टेटमेंट बनाकर भी निकालते हैं और इसे हम एसेट्स अकाउंट बनाकर भी निकालते हैं। मैं आपको एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट भेज दूंगी तो आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से हम परचेज और सेल ऑफ एसेट्स फाइंड आउट करते हैं और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रखते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सबसे महत्वपूर्ण होता है परचेज़ और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकालना। ये डिपेंड करता है कि आपको जो एसेट्स दिए वो कॉस्ट वैल्यू पर दिए या WDV पर दिए। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, के एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस है तो वो WDV कहलाएगा। तो जैसा हमें क्वेश्चन दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को करेंगे। तीसरा आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है। अब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये भी हम बैलेंस शीट से देखेंगे। अगर हमने पिछले साल 10 लाख के शेयर इशू किए और करंट ईयर में 15 लाख दिखा रहा है, दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर में 5 लाख के शेयर और इशू किए। अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो वो इशू ऑफ शेयर मानी जाएगी। और अगर हमने प्रीवियस ईयर में 10 लाख के शेयर इशू किए और करंट ईयर में 8 लाख दिखा रहा है, इसका मतलब हमने अपने प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम्ड कर दिए, तो वो रिडम्पशन कहलाएगा। जो रिडम्पशन है वो आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा और जो इशू है वो इनफ्लो। इसी तरह हम डिबेंचर्स और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को देखेंगे। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हुई। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट बैलेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट बैलेंस और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का नेट बैलेंस, तीनों का नेट बैलेंस निकालेंगे और उसके अंदर जब हम प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये मैंने आज आपको फॉर्मेट पूरा समझा दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपको कैसे बनाना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपने पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।